नो शाखा, इन शाखाओं को तो मिट्टी में दबवा दिया, मूल ऊपर हो गया। अब हम उन टहनियों की पूजा कर रहे हैं, टहनियों को पानी सींच रहे हैं और जिसके कारण वो आम का पौधा खत्म हो गया, खराब हो गया, और हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, प्रयत्न पूरा कर रहे हैं। इसी पर इसीलिए गीता जी में लिखा कि तीनों गुणों की भक्ति करने वाले, इनके ऊपर जिनकी ये इसी क्रियाओं पर, इस शास्त्र साधना पर जो टिके हुए हैं, कहते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म, ये भक्ति के दुष्कर्म हैं। शास्त्र विधि त्याग कविता, कोई उल्टा उल्टा पौधा बीज रहा हो और उसको कह भाई ये ठीक नहीं बीज रखा है ना, सीधा कर ले, फिर नो कहते निंदा करते हैं, कहती हूँ तो निंदा कह सबके पौधों को गलत बताता। जैसे दास के साथ बनी हुई है, हम तत्व ज्ञान बताते हैं, परमेश्वर का शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, ये अनजान संतों के शिष्य न सोचे, ये तो सबकी निंदा करता है। और हम कहते हैं तुमने पौधा उल्टा बीज रखा, इसको सीधा कर लो, बस इतनी सी बात है। और पौधा भी आम का कोई नाम दो, रकीकर का बीज रखे, बबूल का, अर्थात वो साधना भी पूर्ण परमात्मा की नहीं है। अब कहने का भाव ये है दास का कि जब हम शास्त्रों को साधना करेंगे, यानी पौधे को सीधा बीज लेंगे, तो हम जड़ की सिंचाई करेंगे तो हमारे संस्कार ऊपर पहुंचेंगे। हम हमारे जो संस्कार, यहाँ पूर्ण परमात्मा को, पूर्ण प्रभु को इष्ट मानकर जो साधना करते हैं, जैसे पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 3 के मंत्र नंबर 12 से 15 तक लिखा है, 11 से 15 तक के जो यज्ञ करते हैं, जो यज्ञ नहीं करते हैं और जो करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा शुभ कर्मों से होती है, शुभ कर्म इस ब्रह्म ने लगाए, क्योंकि हम कालजाल में फंसे तो ये ब्रह्म, यहां हमने ये क्रियाएं करनी पड़ती हैं, मजदूरी करेंगे तो दो रोटी ये देगा, नहीं तो नहीं देगा, तो ये ब्रह्म ने लगाए। अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्म का अर्थ वेद कर रखा है, गीता जी में ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, ब्रह्म माने प्रभु होता है। अब राजा का अर्थ कोई संविधान कर दे वो अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं, ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, वेद नहीं होता, वेद तो एक ज्ञान है और ब्रह्म प्रभु है, राजा तो एक राजा मनुष्य होता है और संविधान उसका एक अलग पुस्तक होता है। आप कोई राजा का अर्थ संविधान करता है तो वो ज्ञानी है, उसने ज्ञान कर दी। और फिर क्या आगे, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए, यानी ब्रह्म न लाए, ब्रह्म के लोक में फंसे थे, यहां सब मजदूरी करनी पड़ी। और कहते हैं ब्रह्म की उत्पत्ति उस परम अक्षर परमात्मा से हुई, ब्रह्म भी उस पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न हुआ। और फिर उसमें बताया है कि जो पूर्ण परमात्मा को, और वही पूर्ण परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, उसी को हर धार्मिक कर्म में पूर्ण रूप से उसी के निमित्त करना होता है। उसके बाद फिर वो आपका संस्कार, जिस भी इष्ट के माध्यम से आप संपर्क संबंधित हैं, चाहे वो आप किसी को ना भी पूजने तो भी आपको वो फल देगा ही देगा, वैसे नहीं देगा, इतनी सी बात ही। जैसे कोई फैक्ट्री में नौकरी करता है और फैक्ट्री में उसको नौकरी मालिक ने दे दी, अब उसने एप्लीकेशन लिखी तो पूजा करी मालिक की, और फिर उसने नियम बताया कि इन मर्यादाओं में रहते हैं, ये मजदूरी कर तुझे ये दिहाड़ी मिलेगी, वो ऐसा कर रहा है तो उसको उसका वेतन निर्धारित कर दिया उस मालिक ने, और फिर वो दे रहा कौन, कलर्क, एक कैशियर दे रहा होता है, और वो उतना ही देता जो उसकी मजदूरी के उसके बने हैं, उससे कम जाता वो कैशियर नहीं कर सकता, वो तो उसकी फिक्स कर दी मालिक ने, वो तनख्वाह तो उसको ही दे सकता है। अब कोई नादान मालिक ना छोड़कर उस कलर्क के, उस कैशियर के ऊपर आधारित हो जावे और उससे की चमचागिरी करता रहे तो वो भूखा मरे और उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि तू जिस मालिक ने सारी सृष्टि का पालन करता, वही वास्तव में तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धर्म पोषण करता है, गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 17 में, और वही अविनाशी प्रभु वास्तव में है। तो कहते हैं उसकी, उसको छोड़कर और तुम इन कैशियरों के ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश तो कैशियर शब्द उस परमेश्वर की तुलना में, आपका किया हुआ वर्क डन ही दे सकते हैं, इसमें कोई चेंज ये नहीं कर सकते, कोई बदल नहीं सकते। आज शिक्षित समाज है, सब बहन बेटी भाई कहीं ना कहीं संबंधित है किसी संस्था से, या कोई उनको पता है कि कैशियर कौन होता है, मालिक कौन होता है। जैसे सरकार ने आपकी नौकरी लगा दी, तो आपने पूजा तो उसी राजा की ही करनी होगी। आप जहां मजदूरी करोगे उसके अधिकारी आपको अपनी हाजिरी लगाएंगे और कैसी तनख्वाह दे देगा, बस इतना काम है। और अगर तुम उस राजा के दिए हुए ड्यूटी को नहीं करोगे तो आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे, बेशक उस कैसीर के तुम बालक खिलाते रहना। कहने का भाव यह है कि हम भूल गए उस विधि को जिस तरह भगवान हमें राहत देगा। और इतना सा ज्ञान है बस, ज्यादा इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, लेकिन इन अनजान संतों ने ये इतना जटिल बना दी समस्या। कोई कहता है ऐसे साधना कर लो, कोई कहता है ये मंत्र जाप कर लो, कोई कहे ऐसे व्रत रख लो, कोई कुछ साधना, यानी जितने मुख उतनी ही साधना इन संतों की। और वो सारी शास्त्र विधि रहित है क्योंकि वो पवित्र गीता जी में प्रमाणित नहीं है, पवित्र वेदों में प्रमाणित नहीं है, और सौसम वेद उस परम पिता परमेश्वर की वाणी में उनके दिए हुए मंत्र प्रमाणित नहीं है। इसलिए शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विधि रहित होने से ये एक अन्य के नहीं है। अब फिर क्या बताया जाता है कि वो परमात्मा आजा बंदे शरण राम की फिर पीछे पछतावेगा। अब उस कौन से राम की शरण में आना ये निर्णय हम ले रहे हैं। अब फिर आइए आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र पर। आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में लिखा है कि वो कौन है परमात्मा, वो तत्ब्रह्म कौन है, पुरुषोत्तम ये भगवान वो कौन है, जो आपने सातवें अध्याय के 29 मंत्र में जिसका संकेत किया है। तीसरे मंत्र में आठवें अध्याय के तीसरे मंत्र में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और फिर बताया भाई गीता बोलने वाला परमात्मा दो भगवानों की नारी नारी व्याख्या करता है कि अर्जुन ये नियम है कि अंत समय में जो जिसका श्रमण करता हुआ परम त्याग उसी के पास उसी को प्राप्त होगा। मेरी साधना करनी है तो तुम युद्ध भी कर और मेरा ओम नाम का श्रमण भी कर तो मुझे ही प्राप्त होगा, डोंट वरी। और फिर कहता सात में आठ में जाए कि आठ नौ दस में कि यदि तन पूर्ण शांति चाहिए तो उस, और यही नियम है कि उस परम पिता को भी, उस परम पिता की भी भक्ति करता हुआ प्राणी उस तत्वदर्शी संत से विधि प्राप्त करके भी उसका भी यही विधि है, अपना काम भी करे और भक्ति भी करे और अंत समय में श्रमण करता करता प्राण त्याग जाएगा तो वो त्रिकुटी में पहुंचेगा, वहां उसका परम पिता उसको सदगुरु रूप में खड़ा मिलेगा और फिर उसको लेकर के सतलोक जाएगा। कि उसका उस परमात्मा के पाने का भी यही नियम है जो मेरे पाने का नियम है। जैसे खेल का मैदान है और किसी किसी गेम के किसी भी खेल के नियम एक जैसे होते हैं, चाहे वो जिला स्तर पर खेले, चाहे वो स्टेट लेवल पर खेले और चाहे वो नेशनल लेवल पर खेले चाहे इंटरनेशनल लेवल पर खेले, नियम एक जैसे ही। तो ये साधना केवल इतनी बता रखी है कि ओम नाम का जाप उसको काम करते करते चलते उठते बैठते कीजिए। जब युद्ध में भी काम वजन करने के संकेत दे रहा प्रभु तो युद्ध से ज्यादा कठिन काम कोई नहीं हो सकता कि युद्ध में भी मत फूलना तू अगर भक्ति करनी है तो। ये हमारा काम तो कुछ भी नहीं युद्ध को देखते हुए। तो इसी प्रकार उस परम पिता के बारे में आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं अपनी अमृतवाणी में, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे, केवल एक नाम की मजदूरी करके यहां से पार हो सके प्राण। कबीर कहता हूं कई जात हूं सुनता है सब कोए, सुमरण से भला होएगा भाई नात भला ना होए। तो परमात्मा यही कहते हैं कि नाम के जाप से ही जीव का उद्धार होगा, बाकी ये मेडिटेशन करना, एक कपड़ा दे दिया जाता है। श्री आसाराम जी के बहुत से संत भक्तजन यहाँ पर आए हैं, वो क्या बताते हैं कि पहले तो जाते ही 100-125 रुपए का सामान खरीदना हो उपदेश लेने के लिए, एक तो कपड़ा न्यारा नीचे बिछाने का, एक माला अलग से, थैली न्यारी, 36 लटोटर, और फिर कहते एकांत संतान पर बैठ कर ध्यान कराए। अब शाम को दिखाएंगे ये सारी इनकी लीलाएं। और श्री रासाराम जी भी ऐसे आसन पदम ला कर कति शिखर में समाधि चढ़ाए दिखे। तो इन क्रियाओं को पवित्र गीता जी के छठे अध्याय में कति रिजेक्ट किया है और फिर 17वें अध्याय में 16वें अध्याय में बिल्कुल रिजेक्ट किया है। कि जो हठ हठ करते हैं ना, हठ योग करते हैं, एक एकांत स्थान पर बैठकर जबरदस्ती इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करते हो, ढोंग कर रहे हो, तो दंभ कर रहे हो। इसी का परमात्मा भी प्रमाण देते हैं, तन हट कर के मन हट कर ही मनसा माए डोले, जिसकी तारी लगे हरी में फिर कौन को, फिर को किससे बोले। कहते हैं जब तेरी लोग भगवान में लाग जाएगी ना, किसी तुम ही बोलना ना जी ना करे, तुम तो धक्का करके रोकना चाहते हो, लोग दिखावा ड्रामा करके, ये कभी नहीं रुक सकती। और गीता जी में लिखा कि अर्जुन अर्जुन कहता है कि भगवान यो मन तो काबू ना आता, ये क्यों कर रोकू आप तक तो, मन न भी रोके इंद्रिया न भी रोके, यो मन तो काबू नहीं आता। तो खुद गीता बोलने वाला परमात्मा कहते भाई मन तो कोई ना रुके, ये तो वायु को रोकने के तुल्य है, ये सह तो खतरनाक काम है, तो मुश्किल। फिर इस मुश्किल ने रोकोगे कैसे, जब तुम खुद गीता बोलने वाला कह रहा ये तो है तो मुश्किल, फिर बता भी रहा है कैसा कर, फिर इसको आगे जाकर रिजेक्ट करता स्वयं ही गीता बोलने वाला प्रभु। वहां तो वो कहता मैंने ऐसा सुना है, क्लियर ना करता कि गोलमोल रखना सबको। और सत्र में दैन फिर कहे ये बिल्कुल ढोंगी होते हैं जो हट करके एकांत स्थान पर बैठ कर भक्ति करते हैं, ये पाखंडी होते हैं, इनको कोई लाभ नहीं होता, इनको नरक में ठोकूंगा। अब ये बातें जब आपके समझ में आएंगी, ये तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान से ही ज्ञान होता है। और ज्ञान सब ज्ञानेड़ी भाई, तत्व ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का फिर करता चले मैदान। ये परमात्मा का परमेश्वर कबीर साहब का जो ज्ञान है ये तोब का गोला है, अरे भी सब न डालेगा, जितने भी ये कागजी शेर बने बैठे थे इविन सब की कड़ लगेगी, क्योंकि ये निराधार ये बेसलेस है। और परमात्मा का ज्ञान केवल आधारित है, वो निराधार का कोई इसमें समावेश ही नहीं है, वो प्रमाण रहित ही नहीं है। हर शास्त्र हर सदग्रंथ और प्रभु दृष्टा संत आज परमात्मा के एफिडेविट है, उसके गवाह है, क्योंकि हमारे हमारे को अज्ञान इतना बना दिया इन संतों ने। ये बात स्वरूप पहली बार कोई सुनता है तो एकदम एकदम ऐसी सचिची आ जाती है जैसे उफान आता है, और उफान आके एक बार तब ऊपर का उतरने हो जाता है, फिर उसको शांत होता है, फिर देखता है तो हो सचमुच सारे काम बिगड़ गया, फिर रोता है, फिर रोता है बेचारा बैठ के, देव मैंने जीवन खो दिया, हे भगवान सचमुच सचमुच सारी उल्टी कर रखी, सारी व्याख्या ही गलत दे रखी हमारे को, ब्रह्मा विष्णु महेश अजर और अमर है सर्वेश्वर महेश्वर ऐसा है वैसा है। ना व्यास जी ने मेरा आप पढ़ कर देखियो, सामने दिखाऊंगा आपको देवी भागवत महापुराण शिव पुराण ब्रह्मा पुराण, इनमें इन ना ब्रह्मा को मालूम ना व्यास जी को ढंग से ज्ञान। व्यास जी कहते मैंने नारद जी से पूछा था, नारद जी कहते मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था, ब्रह्मा जी कहते मैं तो कमल के फूल पर बैठा था, मेरा बेटा पता नहीं कहां से उत्पन्न हो गया। जब ब्रह्मा जी ने आप पे ना मेरा मैं कौन हुर किता आया हूं तो बताओ, वो उससे पहले का के ज्ञान देगा, उसके बाद की जो उसने आखा देखी कहानी कूनी वह ठीक बता दी, वो सही बता रखी है कि जो भी होना जाना है इतनी होगी, मैं इतने इतना ब्यों था मेरा हम भाई एक और ब्रह्मा देखा, एक और विष्णु देखा, एक शिव जी और देखा, वही बेरा ना कौन थे माता तो जवा गोल मुड़ कर गई है। तो फिर वो अठ योग किया, पहले कहती थी कोई भगवत तेरा पिता नहीं, फिर वेद कहते हैं भाई कुल मालिक और है, फिर मानो कह माँ कहने लगी इतना मिले नहीं, बेसिक ट्राई कर दे बताया कोई बात हुई। तो इस प्रकार ये ज्ञान ही तत्व ज्ञान या परमात्मा बिना सुलझ नहीं सकता, चाहे कितनी बात बना ले, चाहे कितना विद्वान दिखे, चाहे वो कितना हठ योगी दिखे और कितनी प्रकार का वो आपने ढोंग करता दिखे। हमारी तरफ से हमारी वजह हमारी दृष्टिकोण से अज्ञानता की वजह से चाहे वो कितना हमने सिद्ध भी दिखे और चाहे वो सातों समुद्रों को भी पी ले पर मुक्त नहीं है, वो प्राणी मुक्त नहीं है, सिद्धि कोई और चीज होती है, साधना और विधिवत साधना ये अलग चीज है वस्तु है, ये परमात्मा पाने की है। अब जैसे किसी ने भांग बीज ली तो भांग होगी, और जिसको दो पत्ते खवा देगा वो चक्कर काटता फिरेगा तो उससे बात तो नहीं बनी, भूखा मर जाएगा नरी भांग तो बात नहीं बने। तो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है उसकी साधना से ही जीव को सर्व लाभ होंगे। जैसे ये कार्य सिद्ध होना संसारिक सुख संपत्ति तो आपको आप पे मिल जाएंगी, ये परमात्मा की सत भक्ति का बाई प्रोडक्ट है। जैसे हमने कणक बीजनी है गेहूं बीजना है तो गेहूं बीजने का उद्देश्य ये नहीं ये होता है कि हम भूखे ना मरें, हमारे बालक भूखे ना मरें। गेहूं इसलिए बीजा जाता है, और गेहूं के साथ पशुओं का भूस तो आप पर बन जा, वो तो बिना बनाए बन जाएगा। इसलिए जो ये हम सांसारिक सुविधा यहाँ के ठाट बाट जो चाह हैं, जितनी अधिक भक्ति करेंगे ना ढंग से भी दिवस शास्त्र अनुकूल इस परम पिता की इस दास से उपदेश लेकर, उतना गणा टूड़ा हो जाएगा, उतना ही ज्यादा भूस हो जाएगा आपके घर में, उतनी गणी सुविधा भी आवेंगी, आपके ठाठम ठाठ भी हो जाएंगे। लेकिन एक सौदा और है जो गेहूं है वो अलग है इस तरह। तो ये बाई प्रोडक्ट है, गेहूं बनाना चाहवा थे टूड़ा आपका बन गया। तो ये टूड़ा जो आपको बनेगा, ये चारा पशुओं का, ये भक्ति सत भक्ति तो आप बन जाएगा, आपके घर में ठाठम ठाठ हो जाएंगे। आप देख लेना 5 साल के बाद जो सही भक्ति करता हो, इन्होंने बकवाद करनी है कि तो 100 वर्ष लगे रहना, जिसका विश्वास नहीं मालिक में होगा, जो नियम तोड़ता रहेगा उसको कोई लाभ नहीं होगा। वो चाहे बेसिक बात बनाओ, मैं भी नाम ले रहा था, मुझे कोई लाभ नहीं होता, वो उसकी क्रिया बिल्कुल शुरू से ही खराब हो चुकी है। पूर्ण श्रद्धा से समर्पण भाव परमात्मा में रख कर देखना, 5 वर्ष के बाद आपकी जबान नहीं खुलेगी, ये भगवान मैंने युवा दे दी। कुछ पहले तो ज्ञान इतना हो जाएगा, कुछ मांगने को जी कर रहना, जैसे परमात्मा कहते हैं क्या मांगो कुछ ठिर ना रहा, ही देखते नैन से डा जग जाई। 1 लख पूत सवा लख नाती, उस रावण का दीवान बाती। अब क्या मांगेंगे, रावण जितनी तम प्राप्ति भी नहीं कर सकते, सारी सोने की लंका ठाठम ठाठ है सब कुछ था, और फिर इस अस्थाई वस्तु को क्या मांगे, आज रावण के नाम निशान भी कोनी। तो इन सुविधाओं को मांग मांग के हम क्या कितना मांगेंगे, हम मांगना बंद कर देंगे आखिर में, यही कहेंगे साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाओ। इस प्रकार ये जब हम पूर्ण ज्ञान से परिचित हो जाएंगे तब हम इस सत भक्ति पर सुचारू रूप से लगेंगे, और सुचारू रूप पर लगने के उपरांत ही परमात्मा हमें पूर्ण लाभ देगा, हमारे सर्व संकट भी दूर करेगा और हमारे ऊपर मेहर करेगा। तो प्रसंग चल रहा था कि जैसे अब हमने कौन से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। अब कुछ दिनों के बाद आपको अपने निर्णय हो जाएगा कि जैसे ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की भक्ति करते हैं तो ये भी नाशवान, देवी भागवत महापुराण के अंदर प्रमाण देते हैं कि हम तो जन्म और मृत्यु में हम अविनाशी नहीं है। गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि मैं भी नाशवान, तू भी नाशवान, अर्जुन अविनाशी कोई और है। तो फिर आखिर में हम उस अविनाशी के की तरफ हमारा दृष्टिकोण बढ़ेगा, उसी परमात्मा को हम फिर पूर्ण रूप से भक्ति करके उसी की तलाश करेंगे, फिर हमारा अन्य भगवानों के अंदर श्रद्धा कैसी रह जाएगी। जैसे गीता जी में लिखा कि अर्जुन जब आपको पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान और पूर्ण रूप से उसकी जो प्राप्ति हो जाएगी, उसका ज्ञान हो जाएगा, उसके उपरांत अन्य भगवानों में तेरी ऐसी श्रद्धा रह जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय के मिल जाने के उपरांत, बहुत बड़ा जलाशय यानी सरोवर जिसमें 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी पानी समझ उसका जल समाप्त ना हो, उसकी प्राप्ति के उपरांत जिस तो एक सामान्य जोहड़ पर तालाब पर आश्रित था तेरा जीवन, क्योंकि पहले सिंचाई भी और पीना भी उस तालाबों से ही होता था, नदी नहर नहीं बना रखी थी, ना कोई ट्यूबवेल सिस्टम थे, तो उस पर आधारित है कि जिस समय जिस व्यक्ति को पूर्ण जलाशय, बहुत बड़ा जलाशय, परिपूर्ण जलाशय मिल जाता है, छोटे तालाब में उसकी आस्था जैसी रह जाती है, ऐसी तेरी परम पिता के ज्ञान होने के बाद अन्य भगवानों में रह जाएगी। अब जैसे वो छोटा जोहड़ गलत नहीं है, वो वेस्ट व्यर्थ नहीं है, लेकिन वो काम चलाऊ सरकार है, वो पूर्ण लाभदायक नहीं है, इसे पूर्ण परिचित हो जाएगा। ऐसे ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी ब्रह्म परब्रह्म ये हैं, इन में भी थोड़ा बहुत राहत है, लेकिन 2 वर्ष वर्षा ना हुई, 1 वर्ष वर्षा ना हुई तो वो तालाब भी सूख जा, हम भी मर जाए, उस पर आश्रित भी मर जाते हैं। इस प्रकार का है कि उस परम पिता के पाने के बाद फिर इस ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी ना रहे, ये कौन बताएगा, तत्वदर्शी संत बताएगा, वो परमात्मा स्वयं ही आता है, वो स्वयं परमात्मा ही होता है, वो पूर्ण ब्रह्म ही होता है। अब कोई किसी प्रकार की साधना बताते हैं, कोई हठ योग बताता है, ये सब साधनाएं व्यर्थ हैं। हमने केवल अपने सदग्रंथों के अनुसार साधना करनी होगी। पवित्र गीता जी बोली जा रही है और उसमें शास्त्र का प्रमाण चारों वेद ही है, क्योंकि उससे पहले न तो 18 पुराण थी न को उपनिषद था, केवल चार वेद थे। उसके बाद ये चारों वेद दोबारा राइट किए हैं वेद व्यास जी ने, और गीता जी को भी दोबारा बोली गई थी युद्ध में और लिखी गई है बाद में। जिस ऋषि के माध्यम से पूर्व हिस्ट्री लिखानी होती है तो वो उसको लिखवा देता है बैठ के, उसके अंदर प्रवेश करके जो भी वार्ता, जैसे इस ब्रह्मांड में ये शब्द खंड नहीं होता, जो ये वार्ता हो रही है, ये चल रही है, ये जो की तो आज से 1000 वर्ष बाद भी जिस ऋषि का, संत का ज्ञान योग खुल जाएगा, आज के एक एक शब्द को वो सुना सकता है और आपको लिखवा सकता है, उसके बाद उसको कुछ ज्ञान नहीं रहेगा। तो उसमें कौन होगा, उसमें वो ज्योति निरंजन प्रवेश करके और यहाँ के बोले हुए कंप्यूटराइज किए समझो इनको जो का जो बोल देगा। तो ये ना सोचना कि युद्ध में गीता जी बोली गई थी और फिर बाद में वो कैसे, वो तो असत्य भी हो सकती है, नहीं, यही भूल है हमारे। जैसे तुलसीदास जी ने, श्री तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पूर्व की रामायण दोबारा चौपाइयों के माध्यम से ज्यों की त्यों लिख दी। उसको कोई ज्ञान नहीं था, वो संस्कृत में थी, संस्कृत वाली सब नहीं पढ़ पा रहे थे, इन साधारण भाषा में लिख दी, वो ज्यों की त्यों, उसमें भी ज्यों की त्यों मिली। तो ऐसे आदरणीय गरीबदास साहेब ने लाखों वर्ष, लाखों युग की पहले की कहानियां और आने वाले भविष्य में सैकड़ों और लाखों वर्ष पुरानी आगे की भी लिख दी और पीछे की भी अपनी अमृतवाणी लिख दी, क्योंकि परमात्मा ने उनका ज्ञान योग खोल दिया। ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल। तो ऐसे ये सदग्रंथ जो गीता जी बोल रहे हैं तो चारों वेदों का सार है और उसकी तरफ संकेत है कि उस वेद ही, चारों वेद ही तेरे लिए ये शास्त्र है, जिससे अतिरिक्त कोई ज्ञान ग्रहण मत करना, ना साधना कोई ग्रहण करना। फिर संकेत ऑप्शन छोड़ रखा है कि उस परम पिता के विषय में ना तो इन वेदों में वर्णित, मैं जो बता रहा हूं इनमें भी नहीं है उस परम पिता के पाने की विधि। हाँ, उसका, उसकी महिमा अवश्य है। परमात्मा खुद भी कहते हैं, आदरणीय परमेश्वर परम पूज्य कबीर साहब कहते हैं, वेद हमारा वेद है, मैं मिलूं वेद से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये चारों वेद जानते नाही। वेद तो मेरी महिमा गा रहे हैं, मेरा ज्ञान दे रहे हैं, मेरा भेद बता रहे हैं, लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मैं नहीं मिल सकता, उसको तो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। जब वो तत्वदर्शी संत आता है तो उसमें बाधक बहुत होते हैं। धर्मदास जी से कहा था प्रभु ने, धर्मदास जी ने कहा था, प्रभु अब मैं जिसको भी ये ज्ञान सुनाता हूं, अपने संबंधी नित नातियों को, दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को, तो सब उल्टे पड़ते हैं, सब उल्टे पड़ते हैं, कहते हैं तू तो पागल हो गया, आपकी तो बुढ़ापे में बुद्धि खराब होगी। तो परमात्मा ने कहा था, और दूसरे जो संत महंत हैं परमात्मा, वह भी दीदे काट, वो भी हमारे को, मेरे से गुस्सा होते हैं, तो क्यों बकवास करता फिरता है, क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों इन गुमराह करता है। परमात्मा ने कहा, धर्मदास अब नहीं, आने वाले समय में भी जब मेरा कोई संत हंस आएगा और इस तत्व ज्ञान का को प्रचार करेगा, तो ये संत और ये महंत ये उसकी गिना झगड़ा करेंगे, परंतु मैं उस प्यारी आत्मा के साथ रहूंगा, वो आखिर में मुंह की खा के टुकेंगे। क्योंकि परमात्मा जिस संत के साथ हो गया, फिर कहना है कि जिसके साथ भगवान है फिर सारा संसार उसी के साथ हो जाता है, थोड़ा समय लगता है। क्या बताते हैं कि जो मम संत, जो संत मम सत शब्द दर ढावे, वाके संग सब राड बढ़ावे, अस संत मन तन की करनी, धर्मदास मैं सुनाऊं वरनी। कि जब मेरा तत्वदर्शी संत आएगा तो मेरे तत्व ज्ञान को, सत ज्ञान को दृढ़ करेगा, बताएगा इस वास्तविक सब मंत्र का के ऊपर टिकावेगा, तो उस समय के संत और महंत उसके साथ झगड़ा करेंगे, ये उस समय के संत और महंतों के लक्षण होंगे। लेकिन मैं उसके साथ रहूंगा, उस परम परम उस प्यारी आत्मा के मैं हमेशा संग रहूंगा, और उस समय ये पूरा का पूरा तत्व ज्ञान पुण्यात्मा तक पहुंच जाएगा। फिर धर्मदास जी कहते हैं भगवान ये कोई भी ना सुनता मेरी, बीसों को बताता हूं एकाद मान जाता है, बाकी तो सुनते भी नहीं। परमात्मा ने कहा कि जो भी हंसा होगा मोरा धर्मदास वो आवे दौड़िया, जो मेरी आत्मा होगा ना बेटा वो भाग्या होगा। यही चार बातें हम गांव गांव में घर घर में जाकर यही सत्संग सुनाया करते थे, जो प्यारी आत्मा प्रभु की थी वह हमारे साथ साथ आएगी, हमारे संग होगी, और ऐसे ढंग से होगी जैसे पहले से भक्ति करते थे, ये बिल्कुल निरसंशय ढंग से लगे। तो ये कैसा है, क्या बताया, वो कैसे मानेंगे कि जैसे कोयल होती है, कोयल अंडे नहीं देती, अलग घोंसला नहीं बनाती अपने, अलग से अंडे नहीं उत्पन्न करती, वो कवी मादा कवी मादा कव्य के घोंसले में अपने अंडे पैदा कर देती है जब वो कहीं चुग्गा चढ़ने जाती है, और वहां उसके भी अंडे होते हैं। जहां कव्य के अंडे होते हैं उस मादा कव्य के, उन अंडों में ही अपने अंडे उत्पन्न कर देती है वह कवी आती है, मादा कौवा आती है तो उसने वो देखती है कि मेरे दो अंडे थे चार हो गए, अब वो असमंजस में पड़ जाती है कौन से मेरे हैं कौन से दूसरे के, इस डर से वो चारों को ही परवरिश करने लग जाती है, चारों की ही वो सेवा करती है, से देती है। और जब वो बच्चे अंडों से बच्चे निकल आते हैं वो कोयल देखती रहती है, जब वो बच्चे उड़ने लग जाते हैं दूर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं फिर दूर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, और फिर वो थोड़े से देख लेना उड़ारी भरने लग गए तो एक बैठ जाती है दूर वृक्ष पे, वहां कुहू की आवाज लगाती है, और जो कोयल वाले बच्चे हैं अपनी माँ की आवाज को एकदम अंदर कसक होती है, ऐसे देखते हैं वो फिर बोलती है, फिर वो बच्चे दोनों उड़कर, वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस मीठी आवाज की तरफ चल पड़ते हैं अपनी माँ की आवाज की तरफ, और कभी देख भी पीछे उड़ती है कि मेरे बच्चे गए, और वो कोयल उड़कर आगे चल पड़ती है कुहू कुहू करती हुई फिर दूसरे वृक्ष पर बैठकर बोलने लग जाती है। तो कभी सोचती है कि ये तो बच्चे गए सो गए, कहीं वो घोंसले वालों को कोई और आपत्ति ना आ जाए, वो उनको छोड़कर वापस आ जाती है और कोयल अपने बच्चों को लेकर उड़ जाती है। ऐसे परमात्मा की ये वाणी, ये अमृत वाणी, ये कोयल की वाणी गांव गांव में नगर नगर में सीडी लगा करके सीडी के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से ये परमात्मा अपनी कोयल वाली बोली बोल रहा है, और जो परमात्मा के पिछले जन्म जन्मांतर से साधक हैं वो उसके बच्चे हैं, और उसी परिवार का दूसरे सदस्य नहीं नाम ले रहे हैं, वो परमात्मा के किसी जन्म हंस नहीं रहे, वो काल के हैं, और कोयल वाले भाग भाग आ रहे हैं, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे सारा संसार एक तरफ हो जाए, जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा ये जीव उल्टा नहीं हट सकता, इसको पूरा रोशनी हो जाती है, ये दो दिन के नाते बहन और भाई के, पति और पत्नी के, मात और पिता के, कल मृत्यु के बाद कोई साथी नहीं है। हाँ ठीक है, हम जब तक जीवित हैं हमने अपने पूरे नातों को शिष्टाचार से भी निभाना है, लेकिन हमारे कोई भक्ति में बाधक होता है वो हमने बिल्कुल स्वीकार नहीं करना, चाहे वो लड़ना भी नहीं है, चाहे हमने मारे चाहे कुटे। एक भगत जी कह रहा था जी मैं सत्संग में जाने लगा तो घरवाले आर्य समाज जी थे, और मेरे यह बात समझ में आई तो मैं हल जोत रहा था तो मेरे पिताजी ने हमारा रिश्तेदार बुला लिया, मैं जब नहीं माना कि दिन में तो काम करूं पूरा कोई बाधा नहीं आने दूं, रात में सत्संग सुन जाऊं और सुबह फिर उनका वक्त से हल जोड़ दूं, उनको कोई दिक्कत भी नहीं थी, कोई काम में मैं दिक्कत नहीं आने देता था, अपनी नींद में चाहे मैं बेशक दुखी हो जाता, उक्का मैंने छोड़ दिया उस समय को, अपना नींद काट लो 10-20 मिनट जिसे लगे और अपना काम करता रहता हूं। तो घर वालों ने यह भी ना सुहाया कि तू तो पता नहीं किस पाखंड में बढ़ गया। तो कहते हैं मेरे पिताजी ने मेरा बहन का बटे बुला लिया, एक दो रिश्तेदार बुला लिए, भैया तेज ने समझा जो मानता नहीं, तो मैंने उनसे समझा भी मानता क्यों नहीं मैं, हम सत को मान रहे हैं, तुम असत प्रगट अजुड़ रहे, थारी आपकी कैसे मानू मैं। तो उन्होंने सकीम बनाई कि इसका जूत मारो, वो नहीं मानेगा। नो बोला जी मैं तोड़ रहा था, उड़े पहुंच गए चार पांच जने और वो मेरे जूत मारे, और नो कह फिर जाएगा सत्संग में जाऊंगा, वह जूत मारे मैं नो को जाऊंगा, दो चार मार मूर का वो बोले भाई ढीठ है इसने मत छेड़ो, मर ले जा तुमने मरना है। तो कहने का भाव ये है कि हमने चाहे समाज राजी बोले चाहे भाई पीटे, इस मालिक के नाम पर हमने सारे स्वीकारिये होंगे। जैसे बहन मीराबाई जी ने जब ज्ञान हो गया तो उसने किसी को नहीं समझा, ना समाज जाना केवल आत्म कल्याण जाना। आज उस बहन के गुणगान गाए जाते हैं, और जिन्होंने समाज देखा लोक लाज देखी वो आज मर के कुतिया बनी फिरे, कोई ना पूछता। मीराबाई का जब तक संसार रहेगा नाम रहेगा और मुक्ति पाएगी, दोनों काम। इसी प्रकार हमने अब ये थोड़ी सी शक्ति करनी बाधक हो रहा है। तो अब हमने ज्ञान हो गया तो हम नहीं रुक सकते उनको, वो तो राजी रहे थे प्रसन्न रहे थे अप्रसन्न हो जाए, हमने लड़ना नहीं किसी से, अहिंसा का हमारा मार्ग नहीं है। तो इसलिए हमने अपनी भक्ति रूपी खेती को सफल भी करना है और हमने किसी की मान ना दी है। जैसे आप यहाँ सत्संग में आते हो, अनजान व्यक्ति ये कहते हैं भाई तीसरा दिन किराया लगा रहे हो आप, तो पैसे बर्बाद कर रहे हो। अब ये बात समझ में आओगी ना, फिर देखना क्या होगा। जैसे एक किसान बीज रहा था गेहूं का, और एक बड़े शहर का कोई व्यक्ति आ गया, उसकी नौकरी लग गई गांव में, शहर में रिपोर्ट हुआ नौकरी बस किसी गांव में जाना पड़ गया। उसने देखा एक आदमी और गेहूं को मिट्टी में गेरन लग रहा है, उसने देख गेहूं तो देख रहा खेती, तो उसने प्रोसीजर का ना पता था कि ये उत्पन्न कैसे होते हैं। तो उसने सोचा कि ये मूर्ख है, उस हाली को किसान को कहता देखियो बावड़ा पागल, ऐसे खाने की वस्तु को और मिट्टी में डाल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ, शिक्षा देता हूँ। उसने कहा भी रुकना रुकना जरा रुकना, बैलों वाले रुकना। उस किसान ने सोचा भी राह चलता व्यक्ति है, कोई किसी का रस्ता या घर पूछ रहा होगा, वो रुक गया। हाँ बताओ जी क्या बात है। कहने लगा भाई साहब आपको पता नहीं ये कितनी कीमती चीज है जो तू मिट्टी में मिला रहा है, अब क्या अब ये गेहूं मिट्टी में क्यों बर्बाद कर रहा है, ये तो बहुत जो है ना कीमती चीज है, खाने के काम आती है, इसको तो हम अपने ठेकों में डाल कर रखते हैं टैंकियों में, और फिर भी खराब हो जाती है, तो मिट्टी में डाल रहा है, और देश में खाद्य सामग्री की पहले ही कमी है। अब वो किसान सोचता है यो बंदर कितना है गया, इसने यू ही नहीं दे रहा मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे शिक्षा दे रहा है। कहने लगा कहाँ से आए बाबू जी आप, वो कहने लगा मैं उस शहर से आया हूँ, मेरी अभी नौकरी लगी है, आज गांव जा रहा था कोई काम वैसे। तो वो किसान जान गया तो बिल्कुल नादान है, इसने पता है नहीं प्रोसीजर का। उसने कहा कि मैं जो आज ये कनक बर्बाद होती नजर आ रही है ये मुझे आबाद करेगी, एक 40 किलो लाया हूँ एक एकड़ में डालूंगा और इसे ट्रैक्टर पर कर ले जाऊंगा, 60-70 मन होंगे ये। अब वो जो सोचा भी यू ऐसा जादूगर मिट्टी में डाल रहा है खराब कर रहा है, नो कई 70 मन होंगे। वो व्यक्ति कहने लगा क्यों बकावा मुझे, मैं नहीं मानता तेरी बात को। किसान बोला 4 महीने के बाद आइए फिर तुम, यही पाऊंगा मैं तुझे। उसने सोचा भी 4 महीने के बाद फिर स्पेशल गया वो किसान वही मिल गया, जो उसने दिखाया कि देख यहाँ इतने एक दाने के इतने पौधे बन गए, और हर एक पौधे में हर एक में इतनी मिट्टी बाली बन गई है, और बाली में 20-30-40 होगी ऐसे करके दिखाई उसने, ये देख गया हूँ बर्बाद नहीं है मैं आबाद हो गया। तब उसकी बुद्धि माई फिर पूरी प्रोसीजर बताया कि ये ऐसे ही होता है। तो आज जो पैसा जो आप धर्म दान पर किराए भाड़े में लगाते हो, आम व्यक्ति की दृष्टि में वो ऐसा लग रहा है ये बर्बाद कर रहे हैं, नहीं ये पैसा आपको आबाद करेगा।
आपको कई पीढ़ी तक का सुख देगा और आपका भविष्य में भी आपको ये आगे खिला पाओगे। परमात्मा कहते हैं चिड़ी चौंत भर ले गई नदी न घटो नीर, दान दिए धन घटे नहीं कह रहे साहेब कबीर। परमात्मा मोर मारे हैं कि मैं कह रहा हूं ये दान देने तो धन नहीं घटेगा, कहां देने से कुपात्र को नहीं देना, ये गीता जी में मना है। और परमात्मा भी कहते हैं अब गुरु कौन है, जब आप तत्व ज्ञान से परिचित होंगे पृथ्वी पर आपको गुरु नजर नहीं आएगा, ये सत्कर्मा है। और उन जो गुरु नहीं है वहां तुम दान कर रहे हो, आपको कोई योग नहीं, कोई लाभ नहीं। परमात्मा कहते हैं धर्म तो धक्के नहीं से धक्को तीनों लोक, खैरायत में खैर है कीजे आत्म पोखे। धर्म बिना धाते नहीं और सकल पर पंते, आस दराणी क्यों कर है तन दिया हो तो संत। के धर्म के बिना, दान के बिना ये जीव का आधार बेस नहीं बनता। इस उन कर्मों के ऊपर बैठकर हम भक्ति करेंगे, जैसे जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छे दान धर्म कर रखे हैं आज उनकी रोजी रोटी की समस्या बिल्कुल खत्म है, हल है। और अब फिर वो भक्ति करते हैं उस धर्म के ऊपर, पिछले किए हुए के ऊपर, ये रोटी की तो चिंता मिट गई और भक्ति बैठ कर कर रहे हैं तो भक्ति कर रहे हैं आगे और ज्यादा शीघ्र मतलब बात हो जाएगी। और दूसरे जो जिन्होंने पिछले जन्म में धर्म नहीं कर पाए, अब उनको रोजी रोटी की समस्या सामने है। अब यहां जो परमात्मा की आपको शरण मिली है, इस परमात्मा ने आपको स्वीकार किया है, इस यूनिवर्सिटी में, इस स्कूल में, विद्यालय में आपका प्रवेश हो गया आपका, तो आपके जो नंबर भक्ति वाले हैं वो दोनों के बराबर है। चाहे यहां कोई अरबपति है तो खरबपति से बिल्कुल हैंड टू माउथ बिल्कुल गरीब आदमी, और परमात्मा के चरणों में उसने नाम मिल गया उस प्यारी आत्मा को, तो वो दोनों के पिछले जो भक्ति वाले संस्कार हैं वो तो बिल्कुल बराबर है। वो तो वो बिल्कुल उस उनका जो क्राइटेरिया होता प्रभु के स्वीकार करने वाला, जिस प्रवेश पाने वाले मार्क उनके पूरे हैं, उनके 90% नंबर सारे के हैं, उन लोग 80 के ऊपर ऊपर हैं आपके सबके जो यहाँ पर प्रवेश पा चुके हैं। बाकी रही बात कि आपकी आर्थिक स्थिति किसी की अच्छी है किसी की गलत है, कम है तो आपके पिछले जन्मों के वो संस्कार अब करते, अब नए सिरे से शुरू होंगे। अब क्या होगा कि जितना भी आप पुण्य दान प्रथम मंत्र का जाप आदि करते हुए आपकी जेब खर गए, और इससे आपका इस जन्म में भी क्रेडिट देगा भगवान, और बाकी फिर आपको सतलोक में जाने के लिए कन्वर्ट कर देगा जो ज्यादा पुण्य आपने किया है। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा यही कहना चाहते हैं कि तत्व ज्ञान को समझो और समझ कर फिर अपने ढंग से भक्ति करोगे जब यह बात करेंगे। दंत कथा सुना रखी संतों ऋषियों ने जिसके कारण हम खेल हो गए, तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये आप किसी की मत सुनना। एक भक्त के हम पाठ करने गए, गांव गांव में घर घर में जाता था दास, स्वयं जाकर के उनके सारे जिस घर में पाठ करते थे उसके सारे कमरे, एक देते थे हमारे नारा सा कमरा, उसको साफ करते थे, धोते थे साफ, क्योंकि उनमें बीड़ी जारी पी रहती उनकी जरा कैसे होके उसको होकेगा, फिर तमाकू पड़े पाते वो साफ करके फिर उनको करके, और फिर वो अपना 3 दिन भगवान की वाणी 3 दिन ऐसे करते थे कि कोई समझे हमारे बातों को, 3-3, 4-4 दिन दो सुबह भी, दोपहर में भी, शाम में भी सत्संग करते थे, समझाते थे, 10-20 व्यक्ति आते थे। एक भक्त के यहाँ सत्संग हो रहा था, उसने नया मकान बना, उसका कुआल में सिद्ध रहे थे, दरवाजे नहीं सिद्धवा रखते थे और पाठ करवा दिया, का सिद्ध जाता था कि भगवान धर्म करो और दो पैसे धर्म का लगा दूं, ज्ञान हो जाए जिसको। तो उनका एक रिश्तेदार आ गया, बहन का बच्चू शराब पिया करता, अब उस दिन वो बोले बच्चे कहने लगे कि हम अपने आपको अंदर नहीं आने दें, आज हमारे पास चल रहे हैं, अब आपने शराब पी रखी है फूफा जी, आप दूसरे चाचा की तरफ कह दिया, जो नाम नहीं दे रखा था कि वहां विश्राम करो, आज यहाँ नहीं आने देंगे आपको। आपको खाना वही मिल जाएगा, वो तो वहां चले जाए उससे शराब भी ज्यादा पड़ जा। तो हम पाठ का भोग बाद आगे तीसरे दिन, तो वो फिर उनके जिसको रुकिया था उन्होंने उसमें वहां दी देख 2,500 रुपया ला दिए वहां पास करा के ऊपर इनके कुआड़ है ना वो सिर्फ मेरे दरवाजे कहना था क्यों के अपने कुआड़ क्यों ना से 2,500 रुपये खो दिए। तो वह बोली इसने बटे उन्हें बोली आ तो उनको कहने लगे तुम क्या से धर्म करो काहे का धर्म करते हो कुआड़ ना से दुआए गए खड़े पे और ये पैसा बर्बाद कर दिया। अब वो नादान आप दारू की रह सकता दे उन जो परमात्मा का धर्म कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं तो वो क्या मानने उस नादान की बारी को। उन्होंने ये कहेगा पीछा छुटवाया कि कुआड़ भी चढ़ देंगे कुआड़ भी भगवान से दुआ होगा धर्म के बार बार थोड़ा ही होता है। तो कहने का भाव ये है कि हमें शिक्षा वो देते जिन में कहने का ज्ञान नहीं तो हम उनकी नहीं मान सकते क्योंकि हम परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो गए। बोलो सतगुरुदेव की गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम भक्ति कोटि कोटि सिद्धा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बंदी जानूं अव गुण किए तो बोत किए करत नमनी हारे बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उठा अव गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज जो मैं कूत कपूत हूँ मोर सता कूड़ा मैं अपराधी जन्म का नक्षक बरे का तुम दाता दुख वंदना मेरी कर कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम गले प्रेम की रस्सी जाके तो वहां जाऊं तो करो तो बावनो दूर दूर करो तो जाऊं जो रखो तो ही रहो जो देवो सुख कबीर ये तन विष की दे लड़ी गुरु अमृत की खाने शेष दिए जो गुरु मिल तो भी सस्ता जाए गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना खो करता करे न कर सके गुरु कर सो कबीर द्वार धनी के पड़ा रहे द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खावे सो काल धक झोल ली पर द्वार छोड़ नहीं जावे कबीर साहब के दरबार में कमी कहे की ना अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक का करी ना
सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। बोली वस्तु बता दें, सतगुरु है दाता। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की लोक के ये धनी गुरु अग अधीन। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। कबीर नरक द्वार में दूत सब करते खेता तान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारू खान। कबीर चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, तो फेरा सब मिट गया मारे सतगुरु के उपकार। कबीर सात समुद्र की मसीह करूं लेखनी करूं बनराए, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखन गए। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि जगतन हर कुल मालिक कबीर परमेश्वर अपनी प्राप्ति का वास्तविक तरीका सब ही बताने के लिए इस काल के लोक में आते। आप ही भक्त बनते हैं, आप ही दास की भूमिका करते हैं। जो दास के अंदर गुण होने चाहिए, जो एक भक्त के अंदर एक सेवक में जो सेवा का भाव और अधीनी होनी चाहिए, वो भी एक अभिन्न करके परमात्मा स्वयं की हमारे लिए एक छाप छोड़ जाते हैं। आप ही सतगुरु होते हैं, आप ही जगत गुरु होते हैं, आप ही पूर्ण परमात्मा होते हैं। और काशी की एक झोंपड़ी में बैठकर, काशी नगर की एक झोंपड़ी में बैठकर सारे ब्रह्मांडों का भी संचालन वहीं से रिमोट से करते रहे, और यहाँ अपना एक कवि की भूमिका, एक संत की भूमिका, एक दास की भूमिका आप ही पूर्ण करके चले गए। वो परमात्मा कह रहे कि परमेश्वर के पाने का प्रथम पहला जो मेथड है, तरीका है, आपका गुरु होना चाहिए। गुरु जन माला फेरते गुरु जन देते दाने, गुरु जन दोनों निष्फल है तय कुछ वेद पुराण। सबसे पहले गुरु होना चाहिए, और गुरु भी कौन होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? गुरु जी पूर्ण होने चाहिए, तत्व ज्ञान के भेदी होने चाहिए, और प्रभु की कृपा पात्र होने चाहिए। उनको आदेश होना चाहिए पूज्य गुरुदेव से उपदेश देने का, और फिर उन एक कड़ी होती है, एक लिंक होता है, उससे उनका ऊपर से लिंक भी होना चाहिए। और साथ में संत वही होता है जिसको प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। उसके उपरांत वो उन्हीं का स्वरूप हो जाता है। परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान, मेरा ही स्वरूपम। जो मेरा कृपा पात्र संत है उसको मुझे ही मानना, मेरे तुल्य ही समझना। पहले पूर्ण गुरु जी हो और पूरे गुरु के प्रति आपकी कैसी भावना होनी चाहिए, गुरु मानुष कर जानते ते नरक में अंधे, ओए दुखी संसार में आग काल के फंदे। गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पान के नर नर से जाएंगे, युग युग होए समान। परमात्मा कह रहे हैं कि जब पूर्ण संत आपको मिल जाए उसके प्रति आपकी ऐसी भावना होनी चाहिए कि आपके समक्ष परमात्मा बैठे। आपके मन में परमेश्वर ही, आपकी दृष्टि में परमेश्वर ही होने चाहिए। कैसे? परमात्मा कहते हैं कि जब मैं आऊंगा इस पृथ्वी लोक में, आते हैं परमात्मा तो वो भी एक मनुष्य जैसे ही है और तत्व ज्ञान के अभाव से रमंदा करें, तत्व ज्ञान के अभाव से हम परमात्मा को निराकार मानते हैं। और उस निराकार मानने के दृष्टिकोण से समय पर आए हुए उस परमेश्वर को भी हम नहीं पहचान पाते। तो वो परमेश्वर, हाँ ठीक, वो परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं आऊंगा या मैं आया था उस समय मैं मनुष्य रूप में आपको नजर आता रहा, एक मनुष्य जैसा लगता रहा और ना जाने कितनी अद्भुत लीलाएं की, मुर्दे तकदीर किए, कैसे उनके साथ बदतमीजियां की थी। परमात्मा ने किसी को कोई दंड नहीं दिया, अपने कर्मों का आप ही फल पाया। परमात्मा ने कोई बददुआ नहीं दी क्योंकि वो हमारे मालिक है, वो हमारे पिता है, पिता पुत्र को बददुआ नहीं दे सकता। मात पिता अपने पुत्र को अपने तरफ से कोई कष्ट देना नहीं चाहते, इसलिए उस परमेश्वर को मालूम था कि ये प्यारी आत्मा जो आज मेरे साथ संघर्ष कर रही है ये काल के द्वारा प्रेरित है और इसने मेरे ही बच्चों को मेरा ही दुश्मन बना रखा है। दो तीन चार मजहब बना दिए, एक दूसरे के साथ लड़ा दिए, काल ने ये जुलम इस कलयुग में करना था, इसका सुनियोजित था पहले से। परमात्मा कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ, मनुष्य रूप ही है मेरा, मनुष्य रूप में आता हूँ, अपना तेजो में शरीर को गुप्त रखना पड़ता है क्योंकि वो तेजो में शरीर यहाँ प्रगट हो जाए तो किसी ने कुछ भी ना दिखाई दे, उल्लू कैसी आंखें हमारी, इस परमात्मा के तेज को हम देख नहीं सकते। उसने अपने उस वास्तविक शरीर के ऊपर एक ओवर कोट हल्के तेज नूर का, एक तेज कुंज का शरीर उसके ऊपर एक और डाल कर आए थे, मनुष्य जैसे नौकियों के ही होते, जैसे बल्ब के ऊपर कोई और प्लास्टिक चढ़ा दे तो वो बहुत कम उसकी डिम लाइट हो जाती है। ऐसे परमात्मा आए थे तो उस समय ना जाने कितने दुख निवारण हुए, बांध को पुत्र मिला, निर्धन को धन मिला, अंधे को आंखें मिली, कोढ़ी को काया मिली, निर्धन को माया मिली परमेश्वर के आशीर्वाद और श्रीमान जाप करने को। लेकिन फिर भी हमारा दृष्टिकोण अनजान पने में ये रहा कि ये तो संत है, भगवान पे और जैसा होता है, जैसा होता है बस ओहो क्या देखे, वो तो बस बस वो तो कुछ और ही है। कैसा है वह साक्षर में बताते हैं परमात्मा का प्रकाश रूप है, प्रकाश दिखाई देता है, इसका प्रकाश प्रकाशित है। डिवाइन लाइट कहने लग गए इसको, फिर डिवाइन लाइट सीखती है। डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट क्या होती है? दैवी शक्ति, दैवी रोशनी, जैसे ट्यूब लाइट, ट्यूब ट्यूब की रोशनी, ईश्वर की देव देव लाइट, डिवाइन लाइट माने ईश्वर की रोशनी। प्रभु प्रभु बिना रोशनी हो कैसे, ट्यूब बिना प्रकाश हो कैसे? कोई कहे प्रकाश देखा, किस चीज का? ट्यूब का देखा, ट्यूब लाइट देखा। ट्यूब कैसा है? ट्यूब निराकार है, कुछ नादार ने कुछ ना देखा, तुम्हें सुनाई कह। ऐसे ही प्रभु का प्रकाश बताते हैं, परमात्मा को निराकार बताते हैं, उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो केवल दंत कथा सुना रहे। तो परमेश्वर आए थे, हमने उनको भगवान नहीं माना, हम उनको संत मानते रहे। और एक जरा सी लीला की थी प्रभु ने, एक व्यक्ति को हाथी पर बैठा कर गंगा जल भर कर बोतल में और शराबी की तरह रील रोल किया था, 64 लाख सस्ते परमात्मा के, 64 लाख सस्ते गए थे परमेश्वर के, उनके आशीर्वाद से इतना सुख मिलन लग गया था। दुनिया झुंड के झुंड आया करते, उसमें तो प्रचार प्रसार का माध्यम भी नहीं था। और 600 साल पहले 64 लाख हिंदुस्तान में हो जाना तो बालकों का खेल नहीं है, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान से कम मानते थे और सुख से ज्यादा मानते थे। ज्ञान में तो इसे बड़े बड़े विद्वान सर्वानंद जैसे बैल लाते तरह के किसी को नहीं आने देते परमात्मा के नीचे। परमात्मा पहले जाते सुख देते हैं और फिर वो बस सुख करके अपना भगवान का ज्ञान सुनते और फिर वो कुछ दिनों में ज्ञान से अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं। लेकिन अब और उस समय में बहुत अंतर है। परमात्मा उसमें एक रिहर्सल करके चले गए कि निचली पीढ़ी के लिए वो उदाहरण काम आएंगे, कहीं वो फिर मार ना खा जाऊं, एक फाउल पॉइंटों का ज्ञान करा दे। तो उसने 64 लाख से भाग के भगवान नहीं मान्या, ये सोच लिया कि ये तो महाराज जी का बिगड़ गए, दारू पीने लग गए, शराब पीने लग गए और वैसा को साथ लिया अच्छी बच ले। अरे नादाना, कुछ तो बुद्धि काम लेना चाहिए था, बुद्धि तो ये नादान संत छोड़ते नहीं हमारे। तो क्या कहते हैं कि गुरु जी को तुम परमात्मा नहीं मानते तो आगे फेल हो जाओगे। कहते परमात्मा कहते हैं कि जब मैं यहाँ आता हूँ मेरे साथ, और मैं जब अपना कोई कृपा पात्र संत भेजता हूँ, उसके साथ जो तुम्हारा व्यवहार है मैं ऊपर से देखता हूँ। परमात्मा कहते हैं उसकी सब नंबर नोट करता हूँ, उसके उनके जो ग्रेस मार्क आते हैं ना, ग्रेस मार्क, उनमें आपकी प्रैक्टिकल ऐड होता है, ये नंबर ऐड होते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अगर मान लीजिए दास के स्थान पर परमेश्वर स्वयं होते तो आपका क्या व्यवहार होता? परमात्मा कहते हैं कि इस दास के स्थान पर मैं होता, जो व्यवहार तुम आज इस दास के साथ जैसा लगाओ, जैसी श्रद्धा आपकी है, वही प्रभु में गिनी जाती है। इसलिए आपने परमात्मा इस दास को मानना पड़ेगा, चाहे मैं 2 कोटी का जीव हूं, परंतु फिर भी आपको परमात्मा मानना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। जैसे एक मैथमेटिक्स के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, एक क्वेश्चन आता है, इस चीज का हिसाब में गणित के अंदर एक ब्याज का ऋण का सवाल होता है, प्रश्न होता है, उसमें पूछना होता है, उसमें मूलधन निकालना होता है, तो उसके लिए मानना पड़ता है। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और 100 रुपये मूलधन मान के फिर उससे दर निकलता है, रेट निकलता है, प्रतिशत, और फिर उनका आपस में मल्टीप्लाई करके वो मूलधन प्राप्त होता है। यदि उसमें 100 रुपये मूलधन नहीं माना जावे तो वो वास्तविक मूलधन प्राप्त नहीं होता, जो करोड़ों रुपए का होता है। इसी प्रकार गुरु को, गुरुदेव को आपने परमात्मा मानना पड़ेगा। मान लो गुरु जी भगवान, और फिर आपको वो मूल मालिक प्राप्त होगा, जिसका कोई विकल्प नहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नरक में अंधे, ओए दुखी संसार में आग काल के फंदे। फिर आगे क्या बताते हैं, आदमी वीरदास साहब जी ने अपने सदग्रंथ में एक कथा बताई है कि एक कागभूषण नाम के बहुत बड़े अच्छे महापुरुष हैं, उनका ऊपर मुख तो काग जैसा है, चोंच तो कव्य जैसी है, बोलता मनुष्य की तरह है, बाकी शरीर देवताओं जैसा है, मनुष्य जैसा है। एक बार गुरुदेव के साथ उनका आपस में संवाद हुआ था, गुरुड़ जी के साथ। तो गुरुड़ जी ने पूछा था कि आपकी इतनी उपलब्धि कैसे हुई कागभूषण जी, मैं काफी दिनों से सोच रहा था आपसे जानू आपकी ये कहानी। तब कागभूषण जी ने कहा कि गुरुदेव, मेरी लंबी कहानी है, बताता हूँ। मेरे ना जाने कितने मनुष्य जीवन बर्बाद हो चुके थे, मैंने कभी भक्ति नहीं करी। एक समय मैं 20 वर्ष की आयु का था, उस समय अकाल गिर गया, मेरे माता पिता भी मर गए, मेरे भाई बहन भी मर गए, और मैं 20 वर्ष की उम्र में जवान था। मैंने कुछ थोड़ी सी भूख ज्यादा सहन कर ली और मैं बच गया, और वहां से निकल कर अवंतिका नगरी में पहुंच गया। वहां पर अकाल नहीं था, वहां अन्न तो पेट भर खाया। फिर एक मंदिर में एक पंडित जी कथा कर रहा था, वहां पहुंच गया। मैंने अपना सारा दुख रोया कि हे स्वामी जी, ऐसे ऐसे मैं बर्बाद हो चुका हूँ। उस पंडित जी ने मुझ पर रहम आया, अपने पुत्र की तरह वहां रख दिया, बेटा तू मेरे पास रह। 6 महीने तक मैंने उसका सब